بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود بجم محمد وعلى محمد. آج ہمارا موضوع ہے تربیت اور اس کی اہمیت و افادیت. تربیت ایسا لفظ ہے جو ہم کم بیش سنتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کے مفہوم سے آشنا ہیں. ایک وہ تربیت ہے کیا؟ آج اس میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے, اس کے کیا مقاصد ہیں اور تربیت کرنا کیا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا, تربیت کرنے والے افراد کون ہوتے ہیں؟ اب بہت مفصل ایک ٹاپک ہے یہ, لیکن جتنا ہمارا وقت ہے ہم اسی حساب سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا تقریباً آدھا گھنٹہ ہے, اسی میں چاہیں گے کہ اس کو کور کریں. خوب, یہاں پہ جیسے کہ تربیت یعنی پرورش دینا یا پروان چڑھانا, یہ دو مفہوم ہیں جو تربیت کے عنوان سے ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تربیت جو ہے وہ پرورش دینے کے معنی میں, یعنی کوئی چیز کسی کو ایک چھوٹی سطح سے بڑی سطح تک لے کے جانا, ایک چھوٹے اسٹیج سے بڑے اسٹیج تک لے جانا. صحیح, آپ مکان بنانا شروع کرتے ہیں, بنیاد سے اور کھدائی سے کام شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پہلی فلور, دوسری فلور, تیسری فلور, جو بھی آپ کا مقصد ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ بھی در حقیقت کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا, ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج تک. پرورش دینا بھی پروان چڑھانا ہے, تکمیل کرنا ہے. لیکن پرورش میں در حقیقت ہم مادی لحاظ سے تصور کرنے کے ساتھ ساتھ معنوی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے بھی بہت سے مفاہیم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی مادی لحاظ سے مثلا بچوں کی پرورش, تربیت اولاد آپ نے سنا ہوا ہے, تربیت اولاد یعنی بچے کی پرورش کرنا ہے. لیکن زیادہ تر تربیت جو ہے اسلام میں وہ معنوی معنی میں استعمال کی جاتی ہے. مثلا ہم نے یہاں لکھا ہے کہ جسمانی تربیت مراد, ضروریات بدن کو مناسب انداز اور پروگرام کے تحت مہیا کرنا. ضروریات بدن ہیں لیکن کیا چھوٹے بچوں کو ایک کلو دودھ ایک ساتھ منہ میں ڈال دیا جاتا ہے؟ نہیں. ٹھیک, مناسب ایک پروگرامنگ کے تحت, ایک پلان کے تحت, ایک منظم نظام کے تحت اس کو دینا. ضرورت ہے اس کی لیکن ایک ساتھ ضرورت نہیں ہے, مناسب انداز سے دینا. ٹھیک ہے نا, اس لیے جو نیوٹریشن ہوتے ہیں یا دوسرے جو افراد ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر آپ کو غذا کھانے کے پروگرام دیتے ہیں دبلے ہونے کے لیے, موٹے ہونے کے لیے, وہ کہتا ہے آپ اتنے اتنے وقت میں اتنے اتنا کھائیے موٹے ہونے کے لیے یا دبلے ہونے کے لیے. ضرورت بدن کو اس کے مطابق دینا یا کم کرنا. روحانی یعنی ضروریات روح کو ایک مناسب انداز سے ایک پروگرام کے تحت جو ہے مہیا کرنا, جس کو ہم قانون شریعت کہتے ہیں. صحیح, اب ہوتا کیا ہے کہ مادی اور روحانی تربیت میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ کیا ہے؟ مثلاً ایک پودا ہے جس کو آپ نے یہاں پہ بیج کو بویا ہے. صحیح, یہ بیج ہے, اس کو کچھ ضروریات ہیں. ابھی اسی مثال کو لیں, یہ ضروریات جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کو پانی چاہیے, مٹی چاہیے, ہوا چاہیے, روشنی چاہیے. یہ ساری چیزیں ملیں گی, مناسب انداز سے ملیں گی تو یہ پرورش کرے گا, یہ رشد کرے گا, یہ نمو کرے گا. پانی بہت زیادہ ڈال دیں آپ, خراب ہو جائے گا. مٹی بہت زیادہ ڈال دی جائے, خراب ہو جائے گا. مناسب مٹی نہ ملے, خراب ہو جائے گا. بہت زیادہ ہوا دی جائے, وہ خراب ہو جائے گا. ہر چیز ایک مناسب انداز اور پروگرام کے تحت, یہ تب جا کے یہ ایک پودا بنے گا, پھر ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرے گا. صحیح, اسی طریقے سے آپ نے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں تک, یہ اس کا بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, یہ اسٹارٹ ہے, یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے. یعنی یہاں سے یہاں تک پہنچانا ہے. اب آپ نے اس کو گریجولی अगर ग्राफ की सूरत में आप इसको देखें तो आप इसको इस तरह ड्रा करेंगे, ग्राफ बनाएं जी, लॉग वगैरह पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े क्या होता है लॉग? क्या है लॉग का कानून, क्या कहता है? किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी को एक छोटे स्केल में शो करना। आप 50,000 किलोमीटर को मसलन जो क्या कहते हैं वो, आप दुनिया जब ग्लोब बनाते हैं ठीक है ना, दुनिया को जो है वो इस तरह तकसीम करते हैं लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड में, ये क्या होता है? इतनी बड़ी दुनिया को, इतने बड़े एरिया को आप क्या है एक सफ़े पे ले आते हैं, सही ठीक है, सफ़े पे ले आते नहीं आते? गूगल मैप आपका कराची कितना सा होता है, इतना सा होता है, आप उसको इनलार्ज करते रहे, वो फैलता रहेगा फैलता रहेगा फैलता रहेगा, सही है ना? तो आप इतने बड़े लॉग क्या कह रहा है कि एक बहुत बड़े एरिए को, एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन को एक छोटी सतह पर ले आए ताकि आपके लिए काउंटेबल हो जाए, शुमारिश के काबिल हो जाए, सही। यही जो आपने मसलन स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, इसको आपने क्या किया मसलन टाइम के लिहाज से, ये टाइम है, ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक, कि आपने किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी देनी है, ये स्केल है मसलन 1 से लेकर 100 तक, ठीक। तो आपने क्या करना है टाइम के लिहाज से, मसलन फर्स्ट डे कौन सा है, फर्स्ट ईयर कौन सा है, ठीक है ना, आफ्टर 10 ईयर्स कितने होंगे, ये आपने यहाँ से देने शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पे देते जा रहे हैं ठीक है ना, ये ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़ता रहेगा, ये कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे इस तरह बढ़ता रहेगा। वैसे ग्राफ यानी जदवल यानी कोई ऐसा सफ़ा कि जहाँ पर आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन को, 10 साल की प्लानिंग को जो है आप एक सफ़े में शो कर सकते हैं, 5 मिनट में शो कर सकते हैं। ये क्या है, ये प्लानिंग है, यानी मुनासिब अंदाज से एक चीज़ को आगे तक ले जाना, यानी आप 10 साल क्या 100 साल 1000 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन होगी, ज़रूरी कि ऐसे ही हो, ठीक है ना, ऐसे ही हो। बाज़ औक़ात आप टाइम वेरी कर रहा होता है, कभी आप जल्दी दे रहे होते हैं, कभी आप उससे पहले कोई अमल कर रहे होते हैं, जितनी क्वांटिटी देनी चाहिए जिस क्वालिटी की देनी चाहिए आप वो नहीं दे रहे होते, वैसे बात। तो क्या है ग्राफ जो है वो इसी तरह बनेगा, लेकिन अगर जो है मिसाल के तौर पर ग्राफ सही हो तो उसको इस तरह होना चाहिए, सही ग्राफ वही है। जो वेरिएशन आती है ग्राफ में अप एंड डाउन, या बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, वो किस वजह से आता है, या आपने कहीं कमी की है या ज़्यादती की है, कहीं आपने उसके वक्त से पहले या वक्त से पीछे, या उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा या उसकी क्वांटिटी से कम, या उसकी क्वालिटी से ज़्यादा या उसकी क्वालिटी से कम उसको चीज़ फराहम की है, सही। मसलन कहा जाता है आपका इतना वेट है, आपका इतना कद है तो आपका वेट इतना होना चाहिए, अगर आप इतने फीट के हैं इतना आपकी हाइट है तो आपका कद इतना मुनासिब है, इससे ज़्यादा होगा तो ये नुकसानदेह है, इससे कम होगा तो ये भी नुकसानदेह। क्या है ज़रूरियात है बदन को मुनासिब अंदाज और प्रोग्राम के तहत देना। अब ये प्लानिंग आप कर सकते हैं हर काम के लिए, ठीक है ना, हत्ता कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी इसी तरह ग्राफ के तहत जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मंथली प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी एनुअल प्लानिंग कर सकते हैं कि आपने जो है इस साल क्या करना है। मसलन आप अपनी तालीम के साथ साथ और कौन सी स्किल्स हासिल कर सकते हैं, और कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं जिनसे आपकी पेशा वाराना सलाहियतें, जो आपकी जो स्किल्स हैं वो परवान चढ़ें, जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आए। अगर आप खुद शादी का चार्ट उठा के देखें मखमैनी का, तो उसमें बहुत सारी स्किल्स दी हुई हैं मखमैनी ने, क्या कभी हमने उस पर गुफ्तगू की है? वो आपकी किताब के पीछे तो लिखा होगा जनाब, वो खुद शादी का चार्ट और बांट रहे होंगे दे रहे होंगे और सोशल मीडिया पे उसको फॉरवर्ड भी कर रहे होंगे जी, उसके लिए चंदा भी हो रहा होगा, इसको छपवाएंगे, लेकिन क्या कभी हमने खुद कोशिश की है उनमें से किसी स्किल को हासिल करने की? किए, एक दो कितनी है, 20-22 के करीब हैं तकरीबन, अब मुझे भी याद नहीं है कितनी है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि 20-22 के करीब स्किल्स हैं जिन्हें इमाम खुमैनी ने वहाँ पर ज़िक्र किया है। खैर, रूहानी क्या है कि ज़रूरियात रूह को क़ानून शरीयत के मुताबिक फराहम करना। ये जो प्लानिंग है जिस्मानी लिहाज से, मैटर मटेरियल अंदाज से आप किसी चीज़ को परवान चढ़ाएंगे तो आपको मेडिकल साइंस, आपको साइंस ये बता देगी किस चीज़ को कहाँ पर कितनी ज़रूरत है। उलूम इतने तरक्की कर गए हैं, नॉलेज इतनी बढ़ गई है, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, अब आपको बता देगी कि आप में कितना खून होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता देगी। इसका मतलब यह है कि साइंस जो है वो, साइंस जो है ये बता रही है हमें कि हर चीज़ मौजूद है। ये जिस्मानी लिहाज से ज़रूरी अच्छी चीज़ है, लेकिन रूहानी लिहाज से जो है हमारे पास कोई स्केल मौजूद नहीं है। अच्छा, ये स्केल जो है कि मुझे कब कहाँ कितना अमल करना चाहिए, ये आप किससे पूछेंगे? उसके एक्सपर्ट से पूछेंगे, हर एक से नहीं पूछेंगे। आप किससे पूछेंगे? उसके एक्सपर्ट से पूछेंगे कि जनाब मुझे वेट लूज करने के लिए क्या करना होगा, मुझ में चर्बी बहुत हो गई है, मैं देर तक सोता हूँ मिसाल के तौर पे, तो मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे वेट गेन करना है उसके लिए क्या करना चाहिए, या मुझे स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपनी स्टडी को कैसे, किन की पॉइंट्स को अगर मैं अप्लाई करूँ अपनी ज़िंदगी में जिससे मेरी स्टडी अच्छी हो जाए, या मैं अपने स्पोर्ट को अच्छा करना चाहता हूँ, या एक्स वाई जी जो भी आप उसको करना चाहें, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जिनके तहत जो है वो आप इसको ग्रेफ बना के इसका, और इसका एक चार्ट बना के आप अपने आप को तरक्की या एलिवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन भी एक किस्म का इर्तका है, हालांकि वो इर्तका के लिए नहीं होता है, लेकिन आप अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं ग्रेजुअली, ठीक है, लेकिन आप हर एक से नहीं पूछते, उसके अहल से, उसके एक्सपर्ट से पूछते हैं। ज़रूरियात रूह के लिए जो चीज़ है वो क्या है, उसमें भी आपको क़ानून शरीयत के मुताबिक, एक क़ानून के मुताबिक आपको देना है, ठीक। यहाँ पे कोई स्केल है? है, वो स्केल इस्लाम का दे, वो स्केल यही है, अल्लाह का कानून है, दीन है, शरीयत है। मसलन फाइव टाइम्स नमाज सही, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, ये स्केल है सही। यानी आपने फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, सही, क्यों हंसे बता दें, हम भी हंसे थोड़ा सा, वो हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे भाई, ठीक। या सैटरडे, संडे, मंडे, अब आप जी ओके, करते चले जाएं, इस टाइम पे आपने ये करना है। रोज़ा एनुअल आपकी एक इबादत है, हज ज़िंदगी में एक बार वाजिब है, होम्स इतना स्टेटस हो जाएगा तो आपने इतना पैसा निकालना है, ज़कात इतनी चीज़ इतने हिस्से तक पहुंच जाएगी, हर चीज़ मौजूद है, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी तरबियत का एक अंदाज़ है, यानी अगर आप इसको ग्राफ के तहत अगर इसको ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि, यानी आपने शायद अभी तक नहीं किया हो, शायद फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो कि इस तरह ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन आप करेंगे तो ख़ुद आपको मज़ा आएगा। आप एक हफ्ते का अपना चार्ट बना के देखें कि नमाज के लिहाज से, इज्तिमाई जिम्मेदारी के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से, ठीक है ना, अपनी स्टडी के लिहाज से बना के देखें, खुद आपको मज़ा आएगा, खुद आप अपने आप को मार्क्स दे रहे होंगे। आज आप कहेंगे जनाब मैं 98% जो है वो सक्सेसफुल हूँ, आज मैं मसलन 78% मैंने लिया आज मार्क्स इस वीक जो है, ये क्या है, ये तरबियत है अपनी, ये खुदसाज़ी है। ये जो ज़रूरत है कि कब कितनी नमाज पढ़नी है, ये कानून शरीयत बताएगा, मोहम्मद आले मोहम्मद और कुरान बताएंगे, ठीक है। ये तो ये चीज़ हो गई, इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी तो लिख दी हमने, 5 टाइम नमाज है, रोज़ा साल में 1 बार वाजिब है, 1 महीने हज, 1 दफ़ा ज़कात इतनी, खुम्स इतना, जिहाद इतना, तवल्ला तबर्रा अमिल मारूफ नहीं मुनकर वगैरह वगैरह जो वाजिबात हैं, इनकी क्वांटिटी तो मालूम है, क्वालिटी नहीं मालूम, सही। अब कुरान क्या कह रहा है, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनो अमला, वो बाबरकत है वो ज़ात जिसने खल्क किया मौत को और ज़िंदगी को, ताकि तुम्हें आजमाए, एग्जाम करे कि तुम में अच्छा अमल, बेटर अमल, क्वालिटी वाइज अमल, बेहतर अमल करने वाला कौन है। अहसन एक हुस्न, हसन होता है अच्छा, अहसन सबसे ज़्यादा अच्छा, सही। मसलन कबीर बड़ा, अकबर सबसे ज़्यादा बड़ा, इसीलिए अल्लाह अकबर। अहसन क्या है, वही है जैसे अकबर लिखते हैं ना अकबर, इसी तरह अहसन है, ठीक है। कहते हैं ना बहुत आला है, आला यानी अली, अली यानी ऊंचा, आला सबसे ज़्यादा ऊंचा, अहसन सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा अमल करने वाला हो, यानी का सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के लिहाज से अमल करने वाला नहीं, क्वालिटी के लिहाज से अमल करने वाला हो। अय्युकुम अहसनु अमल, तुम्हें बेहतर अमल करने वाला कौन है। तो क्वांटिटी तो हमें बता दी है, ये क्वालिटी कहाँ से आएगी, ये खसूसियत, ये सिफत कहाँ से आएगी, ठीक है ना। ये एक सवाल है, ये तरबियत जो है वो हमें बता रही होती है। ये तरबियत जितना आप तवज्जो देंगे नमाज में, रोज़े में दिल लगाएंगे, उतनी ही आपकी इबादत बेहतर होगी। मसल आप यहाँ पे आ गए, क्या आपकी तरबियत हो जाएगी यहाँ बैठकर। एक लड़का एक एग्जामिनेशन हॉल में आ जाता है, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये एग्जामिनेशन हॉल है। एक लड़का जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में आके अपनी सीट पे बैठ गया, क्या एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल होकर अपनी रोल नंबर की सीट पे बैठ जाना इस बात की जमानत है कि वो पास हो जाएगा, नहीं। दाखिल होना, बैठ जाना जमानत नहीं है। क्या पेपर दे देना हो इस बात की जमानत है कि वो पास हो जाएगा, नहीं। क्या टाइम को अवेयर करना कि जनाब 3 आवर्स जो हैं वो आपने यहाँ गुजार लिए, इस बात की जमानत है कि आप पास हो जाएंगे या कोई तालिबे पास हो जाएगा, नहीं। सही जगह पहुँचे, सेंटर पहुँचे, रोल नंबर पहुँचे, टाइम अवेल करे, 3 घंटा गुजारे, सही पेपर दे, सप्ली पे सप्ली भर देना भी जमानत नहीं है। जमानत किस चीज़ के, जब आप सही सवाल के सही जवाब लिखेंगे, सही है, और परफेक्ट जवाब लिखेंगे, वो जमानत बनेगी। उसी तरीके से सिर्फ नमाज अदा कर लेना जमानत नहीं है, अच्छी नमाज, सही। जो यहाँ के टाइम पास करेगा वो फेल भी हो सकता है, सही। इसीलिए कुरान का फवाइलुल मुसल्लीन, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। कौन सी नमाज पढ़ने वालों के लिए, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, सही। एक तरह का कद अफलहल मोमिनून, मोमिन जो है कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, खुजू करते हैं, दिल देते हैं नमाज में, अल्लाह को दिल से याद करते हैं। एक तरफ कह रहा है कि फवैलुल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले की बर्बादी। कौन सी नमाज पढ़ने वाले को, सिर्फ टाइम पास करते हैं। उनके पास क्वांटिटी तो होती है, क्वालिटी नहीं होती है। तरबियत जो है दर हकीकत उन क्वालिटीज़ को, उन हैबिट्स को, उन फीलिंग्स को उजागर करती है, तरबियत करती है कि जो दर हकीकत इंसान की रूह के लिए ज़रूरी होती हैं और इंसान का राबता जो है वो खुदा से जोड़ती हैं। तरबियत में तीन चीज़ें मुराद होती हैं, एक इंसान और खुदा का राबता, दो इंसान और इंसान का राबता, तीन इंसान और सोसाइटी का राबता। इंसान अपने खुदा से, इंसान का इंसान से अपनी ज़ात से, इंसान का अपने सोसाइटी से, कि तीन चीज़ें जो हैं वो तरबियत में मौजूद होती हैं। अब बात वाज़ेह हो रही है कि तरबियत क्या है। तरबियत जो है दर हकीकत परवान चढ़ाना है, यानी नाकिस को कमाल तक ले जाना है। सही, नाकिस को क्या कहेंगे आप आसान ज़बान में, आसान इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या कहेंगे आप बताइए नाकिस को? हाँ, यूजलेस। नहीं, नाकिस जिसमें ज़रूरत की चीज़ें कम हो, कामिल ना हो, कम्प्लीट ना हो। सही, मसलन आपने अपनी स्टडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाना है, ये डिग्री आपकी मसलन ये आपका सेकंड ईयर है। सही, ठीक है ना, ये आपने मैट्रिक यहाँ से किया है, आपने जो है वो अपने आप को ऊपर ले, आप नाकिस हैं अभी, ये कमाल है। मादी चीज़ों में जो है वो कमाल को मखसूस किया जा सकता है। आपने घर बनाना है, ठीक है, आप खुदाई से शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ी है, ये कमरे हैं, ये टीवी लाउंज है, ये कमरा है, ये कमरा है, ये बाग है, ये खिड़की है, ये दरवाज़ा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आपने ज़ीरो से शुरू किया, 100 पहुंचा दिया, ये दो मंजिला मकान जो है वो आपका तैयार हो गया, नाकिस सा कामिल हो गया। ठीक, लेकिन मानवी उमूर में नाकिस तो तसव्वुर किया जा सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। इस सफ़र की इंतहा नहीं है, इसीलिए कहा इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन यानी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू है, राजिऊन रुजू है, मुसलसल रुजू है, जिंदगी में भी मरने के बाद भी उसी की तरफ, टुवर्ड्स अल्लाह, अल्लाह की तरफ सफ़र जारी है। क्योंकि अल्लाह कोई पॉइंट नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई ये नहीं कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो सफ़र ख़त्म हो जाएगा। वाज़े, यानी आप कहेंगे जरा मैं घर से कॉलेज जा रहा हूँ, खूब यहाँ से निकले घर या पहुँच गए कॉलेज, वापस घर आ गए, घर से मस्जिद जा रहा हूँ, ये मस्जिद आ गई, सफ़र ख़त्म हो गया आपका, वापस आ गए। लेकिन खुदा कोई पॉइंट नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जिस्म नहीं कि खुदा तक पहुँच गए सफ़र ख़त्म हो, इलैहि राजिऊन, इलैहि उसकी तरफ। सही, वाज़े, तो ये क्या है कि इसमें जो है वो जितनी क्वालिटी आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही आप कमाल की तरफ सफ़र करते चले जाएंगे। तरबियत दर हकीकत यही हमें बताती है कि हमें तरबियत कैसे करनी है। अब तरबियत के मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर असबाब और अवामिल ज़िक्र किए गए हैं कि तरबियत का हदफ क्या होता है, तरबियत का मकसद क्या होता है। तरबियत का मकसद जो है वो तीन है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तरबियत जो है तरबियत का मकसद क्या है, तो تین، معرفت خدا، اصول دو، ایمان، تین، تقوی. صحیح، ایمان اور تقوی. پھر ہم معرفت میں آتے ہیں، ایک حصولی ہوتی ہے، ایک حضوری ہوتی ہے. ایمان، اس کے تربیتی فوائد کیا ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تقوی کا فائدہ کیا ہے، تقوی ہوتا کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے عام زندگی میں، ٹھیک ہے نا. یعنی تربیت در حقیقت ہمیں معرفت خدا کا حصول کی طرف لے جاتی ہے. تربیت کا مقصد کیا ہے، کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں. دوسرا طرف کیا ہے، ایمان مضبوط ہو. تیسرا کیا ہے، تقوی. یعنی اگر ان تین اہداف کو لے کے ہم چلیں تو تربیت در حقیقت ہم میں یہی چیز پیدا کرنا چاہتی ہے. یہ خود سازی جس کو کہا جاتا ہے، خود سازی بھی وہی تربیت ہے. خود سازی، خود سازی یعنی خود کی تعمیر، بلڈ یور سیلف، اپنی تعمیر کریں. صحیح، آپ کا کپڑا پھٹ جاتا ہے آپ اس کو سی لیتے ہیں، آپ کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے آپ اس کو دوبارہ سے ٹانک لیتے ہیں، آپ کی چپل ٹوٹ جاتی ہے اس کو ٹانکے لگوا دیتے ہیں، آپ کی چپل یا جوتا میلا ہو جاتا ہے اس کو پالش کر لیتے ہیں، آپ کے کپڑے میلے ہوتے ہیں دھلوا لیتے ہیں، آپ کے کپڑے گجلے بھی ہوتے ہیں سری کر لیتے ہیں، آئرن کر لیتے ہیں، آپ کا شکل بگڑی بھی ہوتی ہے جا کے انسان بن جاتے ہیں، ٹھیک، منہ دھو لیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ ایک کام کو انجام دیتے جا رہے ہیں اور اس کو گریجولی اس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. تربیت یہ ہے کہ معرفت و خدا کا حصول ہو، ایمان ہو، تقویٰ ہو، یہ تربیت ہے. اس ضمن میں اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے، کیونکہ طے یہ ہے کہ اس کے بعد آپ پر ایک کتاب لا دی جائے گی. صحیح، یعنی دی جائے گی آپ کو پڑھنے کے لیے، جو آپ پڑھیں گے پھر آپ کا ایگزام ہوگا اس میں سے. صحیح، تو اگر خوشی خوشی لیں گے تو بہت آسانی ہوگی، اور اگر بادل ناخواستہ لیں گے تو وہ مشکل ہوگی. تو آغاز سفر جو ہے وہ آپ کی کتاب ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھائی کے نام سے ویسے ہی جان نکلتی ہے انسان کی، اور پھر ایگزام بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر آخر میں کوئی یعنی کوئی ٹپ شپ نہیں ملنے والی ہو انسان کو، تو پھر اور زیادہ اسے شوزب بھائی بتائیں گے ٹپ ملے گی نہیں ملے گی. تو امید ہے کہ تربیت جو ہے، اب اس میں بہت ساری باتیں تھیں جو میں نے حذف کر دی ہیں، بہت سارے اور نکات تھے جو میں نے نہیں بیان کیے، اس مختصر وقت میں اتنا ہی کافی ہے. تربیت جو ہے در حقیقت ایک ناقص چیز کو کمال تک پہنچانا ہے، بدن اور روح. بدن یعنی یہ کہ آپ اس کو اس کی مناسب چیزیں دیں، روح اس کی مناسب چیزیں دیں. بدن کے ڈاکٹر ہیں، روح کا ڈاکٹر اللہ ہے، محمد آل محمد ہے، قرآن ہے. آخر میں ایک واقعہ سناؤں اور آپ کی خدمت کو تمام کروں. رسول اللہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا بچے جو ہیں وہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں. ویٹ لفٹنگ جم کے لحاظ سے نہیں، مطلب باری پتھر اٹھا کے دیکھو کون پتھر زیادہ اٹھاتا ہے، وزنی پتھر وہ سب زیادہ بہادر ہوگا. اکثر لڑکوں میں شرط رکھ جاتی ہے نا، ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے داور بن جائیں، ریفری بن جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ دیکھنے چاہتے ہیں ہمیں طاقتور کون ہے، کون زیادہ بھاری پتھر اٹھاتا ہے یا زیادہ دیر تک اٹھاتا ہے مثلا. انہوں نے کہا میں تمہیں ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، پتھر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا تم بہت یعنی قوی انسان ہو، مضبوط انسان ہو، نہیں ہو، بہادر ہو، شجاع ہو، دلیر ہو. انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی نئی چیز ہمیں بتائیے، ہم تو اب تک پتھر اٹھانے کی پریکٹس کر رہے ہیں، جو زیادہ مزنی پتھر اٹھائے گا وہ سب زیادہ بہادر ہے اور مضبوط انسان ہے. کہا کہ اچھا آپ بتائیے. کہا کہ جو شخص اپنی خواہشات نفس پہ قابو پالے وہ سب سے زیادہ بہادر انسان ہے، سب سے زیادہ قوی انسان ہے. صحیح، وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے وہ تین چار کلو کے لحاف کو یا رضائے کو اٹھا کے جو کھڑا ہو جائے گا وہ سب سے زیادہ بہادر انسان ہے. اب انہوں نے ایک فارمولہ دے دیا کہ جو شخص تربیت روحانی کی طرف متوجہ کرتی ہے. تو رسول اللہ کا انداز یہی تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.